हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या 7 और 8। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होण द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनाख सादया। येने च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मोकं कुरु तु वाचालं, पंगु लंघयते गिरा, यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनता। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा था, समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानग तमो वशीर्यते मोह्यं हरे कथयतः कथां। क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं और समस्त अपराधों से मुक्त हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। और तमो विशीर्यते मोह्यम, आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं बता रहे हैं और इन कथाओं के श्रवण करने से मेरे हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। भूय एव विवित्सामी भगवान आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमदीश्वरे। भूय एव विवत्स्वामी, मैं पुनः जानने का इच्छुक हूँ भगवान आत्ममायया, कि भगवान ने अपनी माया से, अपनी निजी शक्ति से यथेदं सृजते विश्वं, जिस तरह से इस ब्रह्मांड का सृजन किया, जो कि दुर्विभाव्यम अदीश्वरे, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी अचिंत्य है, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद परीक्षित महाराज ने कहा श्लोक नंबर 7 में, यथा गोपायति विभुर यथा संयंचते पुनः याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा गोपायति विभुर यथा संयंचते पुनः याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा गोपायति विभुर, यथा गोपायति मना, अब वो भगवान जो इस भौतिक जगत का और बहुत सारे ब्रह्मांडों को सृजन करते हैं, यथा गोपायति वो किस तरह से इन सब का पालन करते हैं, वो महान है, विभुन है, वो उनके विषय में जानना चाहता हूँ कि वो महान भगवान किस तरह से समस्त ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। यथा संयचते पुनः, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि सब को अपने अंदर समेट लेते हैं। याम याम शक्ति उपाश्रित्य, जिस जिस शक्तियां भगवान की, जो बहुत सारी शक्तियां हैं, वो सारी कौन कौन सी शक्तियां लगाकर वो पुरुषतः परम पुमान, वो परम पुरुष हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो कौन कौन सी शक्तियां लगाते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये सारी शक्तियां किस तरह से उस सर्वशक्तिमान भगवान इन सारी शक्तियों को यूज करते हैं, और आत्मानं क्रीडन क्रीडन, और स्वयं खेलते हैं, खेल करते हैं, क्रीडन करते हैं, और क्रीडन और उनसे अपनी शक्तियों के द्वारा भी करवाते हैं। आत्मा यानी वो स्वयं भी करते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा, जिस तरह स्वयं भी कोई खेलता है और दूसरों मोहरे जिस तरह से चलाता है। करोति विकरोति च, करोति मतलब स्वयं भी करते, विकरोति मतलब करवाते हैं, वो कैसे करते हैं, ये अचिंत्य कार्य में जानना चाहता हूँ। इस ब्रह्मांड की रचना को, उसके संरक्षण को, उसके पालन को, पुनः उसका जब विलय हो जाता है उसके विषय में मुझे बताइए। अनुवाद देखिए, कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत से पालन करने में लगाते हैं, और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। एक बार फिर से अनुवाद देखिए, कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कठोपनिषद 2.2.13 में भगवान को अन्य सभी नित्य व्यक्तिगत जीवों में प्रधान नित्य व्यक्ति के रूप में नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामनाम। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बोले, यथा गोपयति विभुर, ये पालन करने का कार्य चाहे वो भौतिक जगत के जीव हो या आध्यात्मिक जगत में या कोई भी जीव है, अल्लाह क्या है, अन्य सभी नित्य व्यक्तिगत जीवों के प्रधान जो नित्य भगवान है वो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, वो ही एकमात्र भगवान जो है असंख्य जीवों का पालन करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामनाम। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों तथा अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ नामक तीन प्रमुख शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। जैसे इन्होंने परीक्षित महाराज पूछे, याम याम शक्ति उपाश्रित्य पुरुष शक्ति पर अपमान। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान की तीन मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति यानी जो भगवान के आध्यात्मिक जगत की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति ये भौतिक जगत की माया, और तटस्थ शक्ति सारे जीव उनकी तटस्थ शक्तियां हैं और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र के होने के कारण सृष्टि करने में कार्यभार भी सौंपा जाता है, यथा ब्रह्मा मरीचि आदि को, और उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। कैसे देते हैं? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, हृदय के अंदर बैठे हुए हैं और संपूर्ण जीवों को प्रेरणा देते हैं। बहिरंगा शक्ति यानी माया को भी जीवों से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्थ शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है और भगवान अपने विविध पूर्ण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में इसे बनाए रखते हैं। यानी कि जो अबद्ध तटस्थ शक्ति जो भौतिक जगत के माया से जाल से बंधन से मुक्त हो जाती है, तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ संबंध जोड़ती और भगवान अपने विविध पूर्ण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में विभिन्न दिव्य संबंधों में उसे बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों में एको बहुनाम बहुश्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं, यद्यपि इतने पर भी वे इन सब से पृथक हैं। यही है भगवान की अचिंत्य शक्ति। भगवान भगवत गीता में बताते हैं 9.4 में, माया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वावस्थित। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसी के विषय में बता रहे हैं कि उनकी अचिंत्य शक्ति यही भगवान की योग शक्ति है। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण उनसे एक तथा पृथक है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है कि प्रत्येक वस्तु के अंदर होते हुए भी भगवान का एक वास्तविक एक व्यक्तिगत स्वरूप है, जिस स्वरूप से वो प्रत्येक जीव के साथ संबंध स्थापित करते हैं अपने वैकुंठ जगत में। इसके बाद परीक्षित महाराज आगे पूछते हैं, नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर् अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर् अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम् इवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर् अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम् इवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनम् मतलब फिर भी अपर्याप्त, भगवतो ब्रह्मन् जो भगवान है वो जितना भी उनके विषय में बोला जाता है वो सब कम है, मतलब कुछ भी जो बोल देते हैं तो समझो कुछ नहीं बोला, ये सब तो बोला मैंने कुछ बताया नहीं है, अपर्याप्त है। भगवतो भगवान का ब्रह्मन्, हे विद्वान ब्रह्मन् सुखदेव गोस्वामी, हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान के तो एक एक कार्य को देखते हैं तो कितना अद्भुत है। इस भौतिक जगत में भी हम देखें कैसे भगवान एक छोटे से बीज, एक छोटा सा बीज होता है, उसको जब हम धरती में बोते हैं तो उससे एक वृक्ष निकलता है और वृक्ष के अंदर ऐसे करोड़ों बीज होते हैं और वो एक एक बीज वृक्ष उगाने की योग्यता रखता है, और इसी तरह से करोड़ों बीज हैं, करोड़ों टाइप के फल फूल हैं और इतने सारे अलग अलग पदार्थ हैं भौतिक जगत में, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतनी सारी योनियां हैं, 84 लाख तो योनियां हैं, और उन योनियों में असंख्य जीव हैं, असंख्य जीवों के अंदर एक अलग तरह की विचारधारा है, अलग तरह का हृदय है, अलग तरह की भावनाएं हैं, मतलब हर कोई जीव हर अपनी एक पर्टिकुलर सत्ता रखता है। तो भगवान जो भी करता है ना, एकदम अद्भुत कार्य है। भगवान के कार्यों को हम सोच नहीं सकते हैं, केवल इस ब्रह्मांड के सृजन में हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत होते हैं, तो फिर हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि भगवान जब श्वास लेते हैं तो उसमें से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। एक एक ब्रह्मांड के अंदर, हमारे इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, किसी के अंदर तो 100 लोक हैं, किसी के अंदर 1000, किसी के अंदर लाखों, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। और ये तो सिर्फ भौतिक जगत की बात है, ये भौतिक जगत तो 25% है और आध्यात्मिक जगत जो 75% है उसके बारे में कुछ भी हमारी मति जो है वो चिंतन नहीं कर सकती। हरेर अद्भुत कर्मणा, बहुत अद्भुत कार्य है। और यहाँ तक कह दिया परीक्षित महाराज, कहते हैं दुर्विभाव्यम इवाभाति, दुर्विभाव्यम अचिंत्य है, सोचा नहीं जा सकता, एकदम अचिंत्य की तरह प्रतीत, इवाभाति ऐसा प्रतीत होता है। और ना केवल मुझ जैसे तुच्छ मंदबुद्धि मनुष्य के लिए, वे कहते हैं कवि भिश्चापि चेष्टितम्, कवि भिश जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी बहुत बहुत प्रयास कर ले, भले बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े शोधकर्ता हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े प्रयास कर लें, लेकिन भगवान की जो कार्य हैं वो अचिंत्य हैं, भगवान के कार्य अद्भुत हैं, तो हम जैसे साधारण जीव नहीं समझ सकते। ये तो आप जैसे कोई महान भक्त ही हमें भगवान के अचिंत्य कार्यकलापों के विषय में बता सकते हैं, तो कृपया आप मुझे उनके विषय में बताइए। अनुवाद देखिए, हे विद्वान ब्रह्मन्, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों ने अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। फिर से देखिए, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान की दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित बड़े बड़े प्रयास कर दें, लेकिन भगवान को समझना बहुत कठिन है, समझने में अपर्याप्त। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है और भगवान इतने विभव हैं कि भगवान के कार्यों को समझने के लिए हमारी बुद्धि की क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए मैं अब जानना चाहता हूँ, कृपया आप उनके विषय में मुझे बताइए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं, और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा अंश मात्र है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है, एकांक्षेन स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करें कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष तीन चौथाई वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में मत धाम या सनातन धाम के रूप में हुआ है। हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक ना तो सृजित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रीला प्रभुपाद जी भगवान के धाम और भौतिक जगत के अंतर को बता रहे हैं कि जब इस भौतिक जगत में ही इतना अद्भुत असंख्य ब्रह्मांडों में इतनी विस्मयकारी वस्तुएं हैं, तो भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है उसकी क्या बात की जाए। और जो क्षय होता है वो केवल इस भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत तो इटर्नल है, वहां पर समय इटर्नल है, वहां पर शाश्वत आनंद है, वहां पर सब कुछ शाश्वत है, कुछ भी लय नहीं होता। इसलिए आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका विनाश नहीं होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम ना कहा जाता। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका सनातन नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों का प्रदर्शन है। भगवान अनादि अर्थात वे जिनका कोई सृष्टा न हो, तथा आदि अर्थात सभी वस्तुओं के उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सृजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सृजित होती हैं। नारायण परो व्यक्तात्, अतएव सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय है। ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है, अतएव ये विद्वान एक दूसरे से, जैसा कि परीक्षित महाराज श्लोक में बताते हैं, दुर्विभाव्यमि वा भाति कविभि चापि चेष्टितम्। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि भी बहुत बहुत प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी भगवान की शक्ति जिसके द्वारा वो विभिन्न जगतों का पालन और सृजन और लय करते हैं, ये अतीव ये विद्वान विद्वानों के द्वारा भी अचिंत्य है और ये विद्वान एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि हम इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक निगण्य अंश है, उन्हें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूर तक फैला हुआ है, कि कितने नक्षत्र तथा लोक हैं, या कि इन अनंत लोकों में कैसी परिस्थितियां हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सब के विषय में पर्याप्त ज्ञान है। उनमें से कुछ यह विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ ग्रह बिखरे हुए हैं। 21 फरवरी 1960 को मॉस्को से एक समाचार विज्ञापित हुआ जो इस प्रकार था। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर ब्रॉस वोरोन्त्सोव वेलियामिनोव ने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ग्रह होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे ग्रहों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फलफूल रहा है। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरोव ने अन्य ग्रहों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह के जीव ने शरीर के कम तापमान की स्थिति में सामान्य जीवन जीने के लिए अपने आप को अच्छी तरह से अनुकूल बना लिया होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस ग्रह के अभ्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उन्होंने अपने को तदनुसार ढाल लिया। विभिन्न लोकों में प्राणियों की इस अनुकूल क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभूति विभिन्नम के रूप में किया गया, अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल दिया गया है और वहां के प्राणी विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी बड़े चढ़े हैं, क्योंकि वहां का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियां और विभिन्न, और भिन्नम का अर्थ है विविध। जो विज्ञानी बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल हैं, वे अन्य ग्रहों के वायुमंडल में नहीं रह सकते। हमारी अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पुस्तक में देख सकते हैं। मनुष्य को इस शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में कहा गया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग साइंसदान बताते हैं कि मंगल ग्रह में ये है, सूर्य ग्रह में ये है, अलग अलग ग्रहों के बारे में बताते हैं और सोचते हैं कि उन ग्रहों में जाकर रहना संभव है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमारा जो शरीर है वो केवल पृथ्वी लोक में रहने के लिए ही अनुकूल है। हमारे शरीर में वैसे तो जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं वो भौतिक जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, इनसे मिलकर ही हमारे शरीर बनता है। लेकिन जिस भी लोक में हम रहते हैं उस लोक के अनुसार वो एक पर्टिकुलर तत्व जो है वो अधिक मात्रा में है। जैसे हम पृथ्वी लोक में रहते हैं ना, तो पृथ्वी लोक में रहने के लिए हमारे शरीर में पृथ्वी का जो तत्व है वो अधिक मात्रा में है, इसलिए हम पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हम सूर्य में नहीं रह सकते, लेकिन सूर्य भी एक ग्रह है और सूर्य में जो रहने वाले प्राणी हैं उनके शरीर में अग्नि तत्व जो है वो अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण वो सूर्य ग्रह में भी रह सकते हैं। तो अलग अलग ग्रहों में रहने के लिए वही शरीर अनुकूल नहीं होता है, उस शरीर में, शरीर को उस ग्रह के वातावरण के अनुसार चेंज करना होगा। और वो कैसे होता है, भगवान बताते हैं 9.25 में, यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृ व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। आपको जिस लोक में रहना है वहां के देवता को आपको भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर बता रहे भगवान यान्ति देवान व्रता देवान, अगर आपको देवताओं के लोक में जाना है तो देवताओं की भक्ति कीजिए और देवताओं के लोक में चले जाइए, पितृलोक में जाना है तो पितरों की भक्ति कीजिए, भूतों के लोक में जाना है तो भूतों की पूजा कीजिए, और अगर मेरे भगवत धाम में आना है तो मेरी भक्ति कीजिए। तो भगवान ने जीव को फ्रीडम दिया है कि वो जहां जाना चाहता है उसका एक तरीका होता है। जैसे यहाँ भौतिक जगत में भी हम जाते हैं ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना होता है तो उस कंट्री की वीजा लेने के लिए वहीं के एम्बेसी में हम लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ता है। उसी तरह से अगर हमको दूसरे लोक में जाना होता है तो वहां के लोक के जो लोग होते हैं, जो देव होते हैं, उनकी पूजा करनी होती है। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजते हैं वे ऐसे ही जीवों के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ रहेंगे। भगवान की सृजन आत्मिक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का व्यक्तित्व यह बताता है कि वे सृष्टि प्रक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे, तो भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाही। श्री प्रभुपाद जी प्रश्न कर रहे हैं कि उनको तो ये सब पता है, फिर वो क्यों जानना चाहते हैं, और साथ में श्री प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका यह ज्ञान इतना पर्याप्त ना था, इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं। भगवान अनंत हैं और उनके कार्यकलाप भी अथाह हैं। सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी अनंत के विषय में जान लेने का कि कल्पना तक नहीं कर सकते। हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब यह अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में विशिष्ट वचनों में बतलाया है। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य वेद व्यास जी से ही सीखा है। इस तरह शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर रीति से समझाया कि भगवान को, भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझना हमारे जैसे साधारण बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन यदि हम भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के विषय में जितना जितना श्रवण करते हैं तो उसे सबसे पहले क्या होता है, हमें भगवान के विषय में बोध होता है, ज्ञान होता है, और जब हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के विषय में शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करते हैं तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम जो है, जो कि अभी हृदय में सुप्त अवस्था में है, वो जागृत होता है। तो हम सब सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से इन अत्यंत ही सुंदर वचनों को सुनते रहेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।